कहते हैं आज जहां रेगिस्तान है वहां परसों पहले समंदर हुआ करता था। समंदर हो या रेगिस्तान, दोनों ही अपने सीने में ढेरों ऐसे रहस्य छिपाए बैठे हैं जिनके बारे में दुनिया को ज्यादा पता नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल जैसी एक जगह है पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में भी हुआ करती थी। जैसा कि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बताते हैं कि वहां जाने वाले जहाज गायब हो जाया करते हैं, वैसे ही कहा जाता था कि इस रेगिस्तानी इलाके से गुजरने वाले काफिले भी अक्सर रेत में कहीं गुम हो जाते थे। आखिरकार लोगों ने उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया। उस जगह का जिक्र अब बस किस्सों कहानियों में ही बाकी रह गया, और किस्से कहानी उनका ना तो सिर होता है और ना ही पैर। हां, 21वीं सदी के वैज्ञानिकों ने एक नए रहस्य के बारे में जरूर बताया है कि जहां आज रेगिस्तान है बरसों पहले वहां पानी हुआ करता था। तो साल 2019 में एक दिन वो आया जब किस्मत अनंत को उसी रहस्यमयी जगह खींच ले गई, और फिर शुरू हुई कहानी काल शंकु की। वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है, और ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो कहानियां। प्रस्तुत है सीजन 2 की दूसरी कहानी काल शंकु, दूसरा अध्याय, भाग 1। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मोहित अग्रवाल। दोस्तों, ये कहानी वो कहानियां सीजन 1 की कहानी काल शंकु का दूसरा अध्याय या सेकंड चैप्टर है, और मैं यकीन दिलाता हूं कि काल शंकु के पहले भाग को आपने जितना पसंद किया है इस भाग को भी आप उतना ही पसंद करेंगे। मैं फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वो तो आप खुद कहानी सुनकर फैसला कीजिएगा। पर वो लिसनर्स जिन्होंने काल शंकु का पहला पार्ट नहीं सुना है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो जरूर सुन लें ताकि घटनाओं का सही क्रम और उनकी इंपॉर्टेंस अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी 9 फरवरी 2019 को पश्चिमी राजस्थान के रेतीले इलाके में, जहां डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अनंत अपनी टीम के साथ आया हुआ था, और वहीं उसे रेत में दबा एक बरसों पुराना बक्सा मिला। उस बक्से से मिले एक कोन या शंकु जैसी चीज का रहस्य सुलझाते सुलझाते अनंत को पता नहीं था कि वो एक बहुत ही खतरनाक राह पर फंस चुका है। वो कौन जिसे सभी लोग काल शंकु कह रहे थे, दरअसल वो एक तरह का रिसीवर था। एक ऐसा रिसीवर जिसने 5 दिन बाद 15 फरवरी 2019 की रात को एक एलियन या कहें देवता को बुलाया था। 15 फरवरी 2019 की रात अनंत उस रहस्य को लगभग समझ ही चुका था कि तभी एक ऐसा खूनी खेल शुरू हुआ जिसने अचानक से सब कुछ खत्म कर दिया। अनंत का दोस्त सुशांत भी उससे छिन चुका था, मगर आखिर में उस एलियन या कहीं देवता ने अनंत से कुछ मांगने को कहा। वो देवता उसे धन, विजय, सफलता या कहीं पूरी दुनिया के सारे ऐशो आराम दे सकता था, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना सकता था। लेकिन अनंत ने देवता से मांगा अपना दोस्त सुशांत, वो सुशांत जिसकी थोड़ी देर पहले मौत हो चुकी थी। देवता ने अनंत को काफी समझाया मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार अनंत को अपना दोस्त सुशांत वापस मिला तो सही, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ जैसी उसने उम्मीद की थी। उस देवता ने अनंत को काल में पीछे फेंक दिया था। काल यानी समय, हां वो काल मतलब समय का देवता था, और उसने अनंत को समय में 5 दिन पीछे वापस 9 फरवरी 2019 के दिन भेज दिया था, उसी दिन जब उसे काल शंकु मिला था। अनंत को समझ आ चुका था कि इस कोन का नाम काल शंकु क्यों है। सुशांत को वापस पाकर अनंत खुश था, लेकिन वो डरा हुआ भी था क्योंकि उसके दिमाग में बार बार यही बात कौंद रही थी कि काल शंकु किसी को माफ नहीं करता है। इसीलिए उसने अपने साथियों के साथ उसी वक्त वापस दिल्ली के लिए निकलने का फैसला कर लिया। अब आगे की कहानी। सपने कितने अजीब होते हैं और हकीकत वो शायद और भी ज्यादा अजीब होती है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा अजीब वो होता है जब ये फैसला ही नहीं किया जा सके कि ये सपना है या हकीकत। डॉक्टर के सामने बैठा अनंत कुछ भ्रम की हालत में चारों तरफ देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद के बीच में जाग गया हो या किसी नशे के असर में हो। यहां तक कि उसे डॉक्टर के पूछे गए सीधे सीधे सवालों का जवाब देने में भी मशक्कत करनी पड़ रही थी। अनंत, डॉक्टर की ऊंची आवाज ने अनंत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। डॉक्टर जवाब की उम्मीद में उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन अनंत को तो यह भी याद नहीं आ रहा था कि डॉक्टर ने पूछा क्या है। बेचैनी की हालत में वो डॉक्टर के केबिन की खिड़की से बाहर देखने लगा। राज उसकी तरफ ही देख रहा था। सुशांत फोन पर किसी से बात कर रहा था। आखिरकार डॉक्टर ने अपनी बात दोहराई। आर यू श्योर आपने कोई ऐसी वैसी चीज, कोई ड्रग या कुछ और तो नहीं लिया था? अनंत असमंजस की हालत में उसकी तरफ देखने लगा और फिर उसने अपना सिर पकड़ लिया। 3 घंटे पहले देवता अनंत को दुनिया की सारी दौलत ऐशो आराम देने को तैयार था, लेकिन अनंत वो तो अपनी जिद पर अड़ा था। क्या पागलपन था ये? उसे अपना दोस्त सुशांत वापस चाहिए था, लेकिन उसे क्या मिला? वो इस वक्त रेगिस्तान की रेतीली आंधी में क्या कर रहा था? उसे पिछली रात की सारी बात याद आ गई कि किस तरह काल शंकु से रोशनी की एक तेज लहर निकली थी जिसके बाद हुए धमाके ने उसे उछाल फेंका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहां रेगिस्तान में कैसे आ गया। गाड़ी में लगी चाबी देखकर वो और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि गाड़ी तो उसने गेस्ट हाउस पर ही छोड़ दी थी। अगर ज्ञान और राज दोनों यहां गाड़ी लेकर आए हैं तो वे इस वक्त कहां हैं? कहीं काल शंकु उन्हें भी तो नहीं निकल गया? उसे बार बार बूढ़े की कही बात याद आ रही थी कि काल शंकु किसी को माफ नहीं करता है। आखिरकार थक हार कर वो वापस गेस्ट हाउस पहुंच गया। राज और ज्ञान से मिलकर उसे कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन सुशांत को जिंदा देखकर उसका सिर चकरा गया। खुश होने के बावजूद वो समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। क्या वाकई में देवता ने सुशांत को फिर से जिंदा कर दिया है? मगर उसके आश्चर्य का तब कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता लगा कि आज 9 तारीख है, 9 फरवरी 2019। अनंत ने राज से पूछा, राज आज कितनी तारीख है? राज ने मासूमियत से जवाब दिया, सर 9 फरवरी। तभी सुशांत बीच में कूद पड़ा, 9 फरवरी 2019। अनंत को जैसे हजारों पिच्छुओं ने एक साथ काट लिया था। उसने उसी वक्त टीवी ऑन करके काफी सारे समाचार चैनल बदल कर देखे। सारे चैनलों पर 9 फरवरी की ही खबरें चल रही थी। अनंत धीरे से बुदबुदाया, तो काल शंकु ने मुझे वक्त में पीछे फेंक दिया है। शायद सुशांत को वापस जिंदा करने का यही एक तरीका था। उस देवता या एलियन जो भी था, उसने मेरी इच्छा पूरी की और मुझे 9 फरवरी 2019 यानी उस दिन जब मुझे रेत में गड़ा हुआ बक्सा दिखाई दिया था, वहीं उसी जगह वापस भेज दिया। सुशांत ने कहा, क्या कह रहा है? एलियन, देवता? बेटा तू डॉक्टर को दिखा ले, और अगर इंसानों का डॉक्टर ना मिले तो जानवरों के डॉक्टर को दिखाना, वो तेरा परमानेंट इलाज कर देगा। अनंत ने जवाब दिया, चुप कर बे, और हम लोग अभी दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, सामान पैक कर लो। राज ने बच्चों की तरह रूठते हुए कहा, नो सर, आज रात रुक जाइए ना, कल सुबह निकलते हैं। लेकिन अनंत ने उसे साफ मना कर दिया। अपने साथियों के कई बार कहने पर भी उसने कह दिया कि वो इस जगह पर और नहीं रुक सकता है। किसी को भी उसका यह व्यवहार समझ नहीं आया और अनंत ने उन्हें समझाने की कोशिश भी नहीं की। पता नहीं क्यों, लेकिन अनंत के दिमाग में उस बूढ़े के शब्द गूंज रहे थे कि काल शंकु किसी को माफ नहीं करता है। पता नहीं काल शंकु ने अनंत को माफ किया था या नहीं, शायद अनंत जानना भी नहीं चाहता था। हां, उसे इस सवाल का जवाब मिल गया था कि काल शंकु नाम में काल का मतलब समय है और अनंत उस बीते हुए काल को भुला देना चाहता था। मगर भूलना और भुला देना इंसान के बस में नहीं है, ये तो समय या काल के हाथ में है। वही काल जिसके पथ पर अनंत अब कुछ कदम पीछे खड़ा था और उसने निश्चय कर लिया था कि वो वापस पुराने रास्ते पर नहीं जाएगा। इसीलिए तो उसने उसी वक्त दिल्ली निकलने का फैसला कर लिया। अनंत के साथियों को उसकी हरकतें अजीब लग रही थीं, लेकिन आखिरकार उन्होंने अनंत की बात मानते हुए वहां से निकलने की तैयारी शुरू कर दी। इस वक्त अनंत कमरे में अकेला खड़ा कुछ सोच रहा था। पिछले 3-4 दिनों में घटी घटनाएं बड़ी तेजी से उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह तैर रही थीं। तभी उसका माथा ठनका, तो फिर अनूप सिंह, बबूती और दूसरे लोग, उनका क्या हुआ होगा? वो सब भी? अनंत आगे कल्पना भी नहीं कर सका। फरवरी की ठंड में भी उसके चेहरे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। बबूती की हरकत याद आते ही उसका खून खौल उठा, लेकिन अगले ही पल उसके गुस्से की जगह डर ने ले ली, क्योंकि उसे सुशांत का अंजाम याद आ गया था। ऐसा लग रहा था कि वो लम्हा बार बार उसकी याददाश्त पर टक्करें मार रहा था। सुशांत को गोली लगना, उसका दम तोड़ना, उसके सामने ही तो हुआ था ये सब। वो कैसे भूल सकता था कि कुछ घंटे पहले वो सुशांत की जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। उस वक्त वो एकदम अकेला, लाचार, असहाय था, और उसी के सामने तो सुशांत ने दम तोड़ा था। अनंत भावों के समंदर में डूबने लगा। उसे लग रहा था कि सुशांत अपनी जान गंवा चुका है, लेकिन तभी उसके दिमाग ने तर्क किया, नहीं, वो पुरानी बात है, उसके बाद सुशांत जिंदा हो चुका है। लेकिन तभी दिमाग ने दूसरा तर्क किया, लेकिन ऐसा भी होता है भला? कोई इंसान मरने के बाद जिंदा होता है कभी? वो जिंदा नहीं हुआ है अनंत, असल में तू समय में पीछे लौट रहा है।
समय में वापसी, समय यात्रा, टाइम ट्रेवल,
ये भी कोई होता है भला? ये तो बस फिल्मों में होता है। लेकिन सुशांत लौट आया है, मतलब अनंत, तो खुद लौट आया है। अनंत के दिमाग में तर्क वितर्क का बवंडर छाया हुआ था। जो कुछ उसके साथ घटा था उस पर उसे खुद को यकीन नहीं हो पा रहा था। ये क्या हो रहा है? अगर सुशांत इस समय में जिंदा है तो आगे क्या होगा? क्या वो फिर से? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, हमें इसी वक्त यहां से निकलना होगा, अनंत ने झुंझला कर कहा। ये लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? मैं आवाज देता हूं, सुश। लेकिन अनंत के मुंह से सुशांत का नाम तक नहीं लिया गया। असल में उसने पिछली रात को सुशांत को मरते हुए देखा था, इसलिए उसके लिए अभी भी ये यकीन करवाना मुश्किल हो रहा था कि सुशांत जिंदा है। उसने अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहा, सुशांत जिंदा है, सुशांत जिंदा है, जिंदा है सुशांत। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बुरा ख्याल आया, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। अनंत ने वापस से टीवी चलाकर कंफर्म किया, लेकिन सारे टीवी चैनल्स 9 फरवरी के ही समाचार दिखा रहे थे। हाँ, ये 9 फरवरी है, 9 फरवरी है, मैं टाइम में वापस आ गया हूं, टाइम में वापस आ गया हूं मैं। लेकिन लेकिन कहीं, अनंत के दिमाग में एक दूसरी बात कौंधने लगी, सुशांत के साथ रात को जो कुछ हुआ वो कहीं मेरा सपना तो नहीं था। अनंत तेजी से सारी घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। असल में उसके लिए घटनाओं पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। वो दो समय रेखाओं, दो टाइमलाइंस की घटनाओं में उलझने लगा था। या कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये उस काल शंकु का असर था जो अनंत के लिए ऐसा भ्रम पैदा कर रहा था। तभी गेस्ट हाउस का मालिक कमरे में आया।
सर, आप तो आज रुकने वाले थे ना, मुझे राज ने बताया कि आप लोग अभी दिल्ली के लिए निकल रहे हैं।
लेकिन अनंत ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कानों में सारी आवाजें गूंज रही हों। गेस्ट हाउस के मालिक ने फिर से उसे कहा, अनंत सर। लेकिन अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया। गेस्ट हाउस के मालिक ने उसके चेहरे पर निगाह डाली और उसके चेहरे को देखकर वो चौंक पड़ा। अनंत बहुत ज्यादा परेशान, उलझा हुआ लग रहा था, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। उसने फिर से कहा, सर आप ठीक तो है ना?
लेकिन अनंत का ध्यान इस वक्त दुनिया की किसी चीज पर नहीं था। वो तो अपने दिमागी कश्मकश में बुरी तरह से उलझा हुआ था। हकीकत में काल शंकु ने उसके दिमाग को काबू में करना शुरू कर दिया था। इस वक्त उसके दिमाग में भ्रम और छलावे का ऐसा एक संसार रच चुका था जिसने उसे वास्तविकता और कल्पनाओं के भंवर में उलझा दिया था। अनंत इस भंवर से उबरने की जितनी कोशिश कर रहा था, ये भ्रम उस पर उतना ही हावी होता जा रहा था। बेचैनी की हालत में अनंत की सांसें तेज चल रही थी। वो पसीना पसीना हो चुका था। गेस्ट हाउस के मालिक ने उसे झकझोरने की कोशिश की, लेकिन अनंत ने अपने सिर को जोर से पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फट रहा हो, और अचानक से वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गया। कोई आधे घंटे बाद अनंत को होश आया। इस वक्त वो एक क्लिनिक में था। उसे होश में आया देख राज खुशी से चहक उठा। अनंत सर, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूं, सुशांत ने इस बार थोड़ा गंभीरता के साथ उससे पूछा। अब कैसा है? अनंत आश्चर्य से चारों तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे समझ नहीं आया कि वो यहां कैसे आ गया। सुशांत ने यह बात भांप कर उसे कहा, तू बेहोश होकर गिर गया था, हम लोग तुझे यहां लेकर आए हैं। लेकिन अनंत को अब भी कुछ समझ नहीं आया। वो सारी बात को समझने की कोशिश कर रहा था। सुशांत ने उससे धीरे से पूछा, अबे तुझे क्या हो गया है? बड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है, सही सही बता, तूने रात को कोई नशा वगैरह तो नहीं कर लिया था? तभी अनंत को याद आया, रात को, हाँ रात को शूट कंप्लीट करके हम लोग रेत पर पार्टी कर रहे थे, और तू अपनी एसयूवी लेकर एक लोकल बंदे के साथ वहां से निकल गया था, उसने तुझे कोई नशा वगैरह तो नहीं करा दिया? नहीं यार, उसको तो मैंने उसकी ढाणी में उतार दिया था, और वहां से मैं गेस्ट हाउस वापस आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं आ रहा। ये काल शंकु का असर था। असल में बेहोश होने के बाद अनंत की याददाश्त के साथ कुछ हुआ था। काल शंकु के मिलने से लेकर उसके बेहोश होने से पहले तक की सारी बातें उसकी याददाश्त से बिट चुकी थी। वहीं अनंत का जवाब सुनकर सुशांत ने आश्चर्य से कहा, क्या बात कर रहा है तू? थोड़ी देर पहले तू आकर मुझसे पूछ रहा था कि मैं जिंदा हूं क्या, आज तारीख कितनी है, कुछ एलियन देवता पता नहीं क्या कह रहा था। अनंत ने जवाब दिया, क्या कह रहा है, पागल हो गया क्या? सुशांत ने हैरत के साथ पूछा, तुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था? बदले में अनंत ने ना में सिर हिला दिया। सुशांत ने फिर से कंफर्म किया, आर यू सीरियस? अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी डॉक्टर वहां आ गया। डॉक्टर ने आते ही पूछा, मिस्टर अनंत हाउ आर यू? आई एम फाइन डॉक्टर। इसके बाद डॉक्टर ने उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ECG वगैरह किया, लेकिन अनंत पूरी तरह से नॉर्मल था। डॉक्टर ने अनंत से पूछा, आपको पहले कभी इस तरह का दौरा पड़ा है? दौरा शब्द सुनते ही अनंत चौंक पड़ा। उसने नामे सिर हिलाया और सुशांत की तरफ देखने लगा। सुशांत को इस मौके पर भी हंसी आ ही गई। उसने हंसते हुए कहा, नो डॉक्टर, अनंत इज फिजिकली एंड मेंटली फिट एंड फाइन। पता नहीं आज क्यों अजीब सी बातें करने लगा और फिर बेहोश हो गया। डॉक्टर, ये कहीं किसी तरह के ड्रग का असर तो नहीं है? डॉक्टर ने कहा, उसके लिए हमें इनके कुछ टेस्ट और करने पड़ेंगे। अनंत उकता गया। उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा, नो नो नो, आई एम टोटली फिट, मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाने। बोलते बोलते अनंत ने अपना सिर पकड़ लिया। उसके सिर में तेज दर्द उठा था। डॉक्टर ने कहा, आर यू ओके? अनंत ने दर्द से कराहते हुए कहा, यस आई एम ओके, मैं ठीक हूं। लेकिन अनंत की आवाज से पता चल रहा था कि वो ठीक नहीं है। सुशांत ने डॉक्टर के कान में कुछ कहा और राज को लेकर बाहर चला गया। इधर अनंत को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। वो डॉक्टर के सामने बैठा भ्रम और संदेह की हालत में चारों तरफ देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद के बीच से जाग गया हो या किसी नशे के असर में हो। यहां तक कि उसे डॉक्टर के पूछे गए सीधे सीधे सवालों का जवाब देने में भी मेहनत करनी पड़ रही थी। अनंत, डॉक्टर की ऊंची आवाज ने अनंत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। डॉक्टर जवाब की उम्मीद में उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसे तो यह भी याद नहीं आ रहा था कि डॉक्टर ने उससे पूछा क्या है। बेचैनी की हालत में अनंत डॉक्टर के केबिन की खिड़की से बाहर देखने लगा, जहां राज उसकी तरफ ही देख रहा था। सुशांत फोन पर किसी से बात कर रहा था। आखिर डॉक्टर ने अपनी बात दोहराई, आर यू श्योर आपने कोई ऐसी वैसी चीज, कोई ड्रग या कुछ और नहीं लिया था? अनंत असमंजस की हालत में उसकी तरफ देखने लगा और फिर उसने अपना सिर पकड़ लिया। नो डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ड्रग लिया होगा, बस मुझे थोड़ा सिर दर्द और थकान है। ऐसा लग रहा है कि काम के प्रेशर में शायद ऐसा हुआ है। थोड़ी देर में अनंत के कुछ दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट भी आ चुकी थी। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, इसलिए डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखकर अनंत को जाने के लिए कह दिया। किसी को भी ये पता नहीं था कि अनंत के साथ असल में हुआ क्या था। यहां तक कि इस बार तो अनंत भी सारी बातों से अनजान था। हाँ, अनंत के इस तरह बेहोश हो जाने की वजह से उनका दिल्ली जाना एक दिन के लिए टल गया था। गेस्ट हाउस पहुंचते ही अनंत अपनी दवाएं लेकर सो गया। नींद में उसे अपने साथ पिछले 4-5 दिनों में घटी घटनाओं की झलकियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये सब हकीकत में घट चुका है। काल शंकु ने अनंत की याददाश्त से वो पूरा हिस्सा धुंधला कर दिया था। शाम को जब उसकी नींद खुली तो उसे वो धुंधली धुंधली झलकियां याद आ रही थी, लेकिन ये सब झलकियां सपनों की हल्की यादों से बढ़कर कुछ नहीं रह गई थी। उसने राज से कहकर अपने लिए चाय मंगवाई। दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। राज ने उससे पूछा, सर आप ठीक है ना? अनंत उसे देखकर हंसने लगा। राज, मैं एकदम ठीक हूं, देख तू जानता है मुझे कुछ नहीं हो सकता। अनंत ने एक बॉडी बिल्डर की तरह उसे अपने बाजू दिखाए। राज को हंसी आ गई। सर सुबह आपकी हालत देखकर हम सभी डर गए थे, पता नहीं कितनी अजीब बातें कर रहे थे आप। आपको सही में याद नहीं है कि आपने क्या कहा था? उसकी बात सुनकर अनंत कुछ सोच में पड़ गया। उसे वाकई में याद नहीं आ रहा था, लेकिन उसने राज से कहा, यार मुझे थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था वो याद नहीं है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और सुशांत कमरे में दाखिल हुआ। हेलो वॉचमैन, अब कैसा है? मैं ठीक हूं, तुझे क्या लगता है? मुझे तो तू अभी भी टीला लग रहा है। कोई ना, सुबह तक ओके हो जा, फिर हम खजाना ढूंढने चलेंगे। खजाना? हाँ खजाना, वो भी एकदम असली वाला। राज ने कहा, सर क्या कह रहे हैं आप? सुशांत ने जवाब दिया, बेटा राज मैं कह रहा हूं कि कल हम सब लोग रेगिस्तान में खजाने का बक्सा लेने जाएंगे। एक्चुअली फाउंड ए ट्रेजर बॉक्स बरीड इन द डेजर्ट। राज ने आश्चर्य से कहा, व्हाट? हाँ राज, मैं तो आज ही वो बक्सा ले आता, पर क्या करूं, वो बक्सा इतना भारी था कि मुझ अकेले से तो वो बाहर निकला ही नहीं। कल हम चारों चलेंगे और उस बक्से को निकाल लाएंगे। रियली सर? राज ये बात सुनते ही खुश हो गया था, लेकिन अनंत, उसके दिमाग में कुछ खटकने लगा। वो सोच रहा था, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, शायद ऐसा ही कोई सपना देखा था मैंने। आप सुन रहे थे काल शंकु दूसरा अध्याय, पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग एक, लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, इन एसोसिएशन विद पिक्सल सिटी प्रोडक्शंस।